पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 3 ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंता नमो सिद्धां नमो आययाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं पणमियनिसंकमणो पच्चूहसमुद्दसंकमे जिनचलने बन्धगमहायाणं यह श्री भीमसेन आचार्य की जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो आठवीं पुस्तक है बंधक नाम का अर्थाधिकार, उसमें हम पृष्ठ संख्या 18 पर आ गए। 18 हमने कल मूल गाथाएं पढ़ी थी कषाय पाहुर की, 24, 25 और 26 नंबर की। उन्होंने ये बताया था वहां पर कि उपक्रम 4 प्रकार का है, निक्षेप 4 प्रकार का है, नए भी उसमें बताए हैं, और निर्गम कहो या अनुगम है वो 8 प्रकार का है। फिर उसके जो प्रकृति संक्रम जो है उसके भी भेद बताए, और ये जो 8 प्रकार के निर्गम है उसकी भी बात बताई थी। एक है प्रकृति संक्रम, एक है प्रकृति स्थान संक्रम, तीसरा है प्रकृति प्रतिग्रह, और चौथा है प्रकृति स्थान प्रतिग्रह, और इससे विपरीत यानी अप्रतिग्रह लगा लेने उसमें, तो ये 8 होते हैं। अभी इसके एक एक शब्द का अर्थ यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ जो 18 पृष्ठ पर 2 नंबर का सूत्र है, एदासिम गाहाणम पदच्छेदो, इन गाथाओं का पदच्छेद, ये पदच्छेद ने एक एक शब्द लेकर उसका अर्थ बताएंगे अलग अलग। अब इससे आगे इन गाथाओं का पदच्छेद करना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार से गाथाओं के प्रत्येक पद के अर्थ का व्याख्यान करना संभव नहीं है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। उन्होंने समुदाय रूप से अर्थ बता दिया है, अभी एक एक शब्द लेके उसका अर्थ बताएंगे। तम जहां यानी यथा, यह सूत्र सुगम है। संकम उपकम विहि पंच विहोति, वही पढ़ रही
मैं। अच्छा अच्छा, मैं बोला नीचे पढ़ रही।
एदस्त पदस्त अथो पंच विहो, उवक्कमो आनुपूवीनामं पमाणं वत्तव्वदा अत्था हि आरोचेदि। यहाँ नीचे फुटनोट में लिखा है ताप्रतौ एदस्य इत्यतः सूत्रांशस्य टीकांशेन निर्देशः कृतः, यानी इन संक्रम, अभी नीचे हिंदी में पढ़ेंगे उसका ख्याल में आ जाएगा। संकम उवक्कम विहि पंचविहो, पंचविहो यानी 5 प्रकार का, यानी संक्रम उपक्रम विधि 5 प्रकार का है। इस पद का अर्थ है कि उपक्रम 5 प्रकार का है, आनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये तो पहले भी बात हम पढ़ चुके थे। यहाँ पदच्छेद करके एक एक पद का अर्थ बता रहे हैं, इसलिए दोबारा इसको ले लिया। 18 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में जो संक्रम उवक्कम विहि पंचविहो यह पद आया है, सो इसका क्या अर्थ है, ऐसी आशंका करके अनुपूर्वी आदि भेद से उपक्रम 5 प्रकार का है, यह इस पद का अर्थ है, ऐसा इस चूर्णी सूत्र में निर्देश किया है, इन्हें बताया। सो इनमें से अनुपूर्वी नाम प्रमाण और वक्तव्यता इनका अर्थ सुगम है, किंतु जैसा कि आगे कहा जाने वाला है तदनुसार अर्थाधिकार आठ प्रकार का है। हमने अनुपूर्वी देखे तीन प्रकार की होती है, ये पूर्वानुपूर्वी पश्चातानुपूर्वी यत्र तत्रानुपूर्वी। नाम अलग अलग दस प्रकार के, उसमें एक गौणी नाम है वो पहले बताया था। प्रमाण उन्होंने बताया था पद संघात वगैरह के अनुयोग की अपेक्षा संख्यात है और अर्थ की अपेक्षा भाव की अपेक्षा अनंत है। वक्तव्यता में स्व समय वक्तव्यता है, यानी जिन मत के अनुसार इसमें कथन है। और जो अर्थाधिकार है वे आठ प्रकार के ये बता रहे। आगे का सूत्र चहु विहो या निखेवो तिनाम ठवणम वज्जम दौवम खेतम कालो भावोच, ये निक्षेप जो छह प्रकार के उसके बता रहे हैं। चहु विहो या निखेवो पद का अर्थ है नाम और स्थापना को छोड़कर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चार निक्षेप हैं। नहीं तो छह बताए उन्होंने आगे और बता रहे चार ही है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार और नाम स्थापना ये दो। यहाँ पर इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि प्रथम गाथा में जो चौविहो ये निखेवो यह बीज पद है, सो इसका अर्थ है कि प्रकृति संक्रम को विषय करने वाले द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चार निक्षेप है। शंका, ये चार ही क्यों है? उसका समाधान, क्योंकि यहाँ पर नाम और स्थापना निक्षेप को छोड़ देना चाहिए। फिर शंका, इन दोनों को यहाँ क्यों छोड़ दिया है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि इन दोनों का इन्हीं चारों में यथासंभव अंतर्भाव देखा जाता है। अंतर्भाव भा का रफार अस्पष्ट है, जरा स्पष्ट करना। या वे सुगम है, यानी नाम रखना या स्थापना ये दोनों सुगम है इसलिए छोड़ो, या अन्य में किसकी बात कर रहे हैं उसका वो नाम है, हम संक्रम की बात कर रहे हैं तो अन्य कोई भी निक्षेप को उसमें तो संक्रम का नाम ले ही लेंगे हम, इसलिए इन दोनों को छोड़कर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनका ग्रहण किया है। इन द्रव्यादि चार निक्षेपों में आगम द्रव्य प्रकृति संग्रम सुगम है। ये प्रकृति संग्रम पर अभी संक्रम पर लगा रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वहां कहते हैं जब द्रव्य निक्षेप होता है उसमें आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप दो करते हैं हम, तो उसमें से आगम द्रव्य संक्रम कहो या आगम द्रव्य प्रकृति संक्रम कहो ये तो सुगम है, क्योंकि अभी उसकी परिभाषा बताते हैं। जो प्रकृति संक्रम विषयक प्रावृत को जानता है, प्राकृति प्रावृत यानी जिनागम शास्त्र से जो जानता है किंतु उसके उपयोग से रहित है, वो जान रहा है परंतु उसका उपयोग अभी उसमें नहीं है अन्यत्र है, वह आगम द्रव्य प्रकृति संक्रम कहलाता है। यानी आगम का ज्ञाता है कौन से आगम? प्रकृति संक्रम संबंधी आगम, यानी उस जीव को आगम द्रव्य प्रकृति संक्रम कहेगा, वो ज्ञाता जीव उपयोग से रहित वाला। नो आगम द्रव्य प्रकृति संक्रम कर्म और नो कर्म के भेद से दो प्रकार का है। इनमें से नील कमल का गंध संक्रांत हुआ यह नो कर्म द्रव्य प्रकृति संक्रम का उदाहरण है, यानी कर्म को छोड़कर अन्य जो कुछ है वो नो कर्म में चला जाएगा, क्योंकि जिन दूसरे द्रव्यों को नील कमल के गंध से वासित किया जाता है उनमें उस गंध का संक्रमण देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये नील कमल नाम का जो कोई पुष्प है, फल कमल का पुष्प है, उसका गंध जैसे हम सुगंध मोगरे की सुगंध है जो सेंट हम अलग अलग देखते हैं परफ्यूम, तो ये नील कमल का जो परफ्यूम है उससे किसी द्रव्य को सुगंधित किया तो वो तो उड़ जाता है या अन्य गंध रूप परिणमित होता है, तो उसको कहेंगे वो गंध संक्रांत हुआ। आगम में बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहनीय की मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण होना कर्म द्रव्य प्रकृति संक्रम है। यानी एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप, अभी उसमें जो कोई कंडीशन से वो बताएंगे, सजातीय होनी चाहिए आदि, तथा क्षेत्र आदि निक्षेपों का अर्थ पहले के समान कहना चाहिए। उन्होंने पहले ही बता दिया ऊर्ध्वलोक संक्रांत हुआ ऐसा, यानी वहां के जीव यहाँ आ गए तो उसको ऊर्ध्वलोक संक्रांत हुआ कहेंगे। ये पहले इसका अर्थ बता चुके हैं, अभी दोबारा एक एक पद का अर्थ ले रहे हैं। नय भी पयदम तियेत्थत णवो वत्तवो। नय विधि पयदम, इस पद के अनुसार यहाँ पर नय का व्याख्यान करना चाहिए। प्रथम गाथा में नय विहि पयदम, यह जो अर्थपद आया है यानी ये जो शब्द आए हैं, तदनुसार यहाँ पर नय का कथन करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना निक्षेपों का अर्थ विषयक निर्णय नहीं हो सकता। यानी जो निक्षेप हम बताएंगे उसका विस्तार से वर्णन तो बाद में करेंगे, पहले में कौन सा निक्षेप किस नय का विषय है, इसलिए नय का व्याख्यान पहले कर लिया उन्होंने। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार निक्षेपों में से नयगम नय सब प्रकृति संक्रमों को स्वीकार करता है। संग्रह और व्यवहार नय काल संक्रम को स्वीकार नहीं करते, इसके बारे में कल भी बहुत चर्चा हुई ना अपनी। इसी प्रकार रुजु सूत्र नय भी काल संक्रम को स्वीकार नहीं करता, हमने देखा था वो स्थापना को भी स्वीकार नहीं करता, परंतु यहाँ इन चारों की बात हो रही है इसलिए यहाँ के वो भी नहीं स्वीकार करता। तथा शब्द नय का एक भाव निक्षेप ही विषय है, नाम निक्षेप को भी ये स्वीकारता है, परंतु यहाँ नाम की बात उठाई नहीं है, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से भाव निक्षेप इसका विषय है। इस अधिकार में द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कर्म द्रव्य प्रकृति संक्रम का प्रकरण है। यानी यहाँ जो बात बताएंगे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ये बात होगी इसमें, रुजु सूत्र नय शब्द आदि जो आगे वाले जो है वो पर्यायार्थिक नय है, आगे का सूत्र। पयदेच निगमो होई अठवी हो ती पयड़ी संकमो, पयड़ी असंकमो, पयड़ी ठाण संकमो, पयड़ी ठाण असंकमो, पयड़ी पड़िग्रह, पयड़ी अपड़िग्रह, पयड़ी ठाण पड़िग्रह, पयड़ी ठाण अपड़िग्रह ती ऐसो निगमो अठवी हो। ये आठ नाम यहाँ बताए, उन्होंने पहले प्रतिग्रह रूप से बताए थे, उसमें अ लगाकर और चार वैसे बनेंगे। पयदेच निगमो होई अठवी हो, इस पद के अनुसार प्रकृति संक्रम, प्रकृति असंक्रम, प्रकृति स्थान संक्रम, प्रकृति स्थान असंक्रम, प्रकृति प्रतिग्रह, प्रकृति अप्रतिग्रह, प्रकृति स्थान प्रतिग्रह और प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह, यह आठ प्रकार का निर्गम है। इसी को अनुगम भी कहा था, क्योंकि हमने देखा था ना ये अनुगम इसका नाम है। पयदेच निगमो होई अठवियो, इस बीज पद में प्रकृति संक्रम और प्रकृति असंक्रम आदि के भेद से आठ प्रकार का निर्गम अंतर्भूत है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उनमें से प्रकृति संक्रम पद से अभी उसके रिविजन्स जो है वो बताएंगे। एक एक प्रकृति संक्रम को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति स्थान संक्रम का अलग से कथन किया है। यानी जब प्रकृति संक्रम इतना ही बता दिया तो एक एक प्रकृति संक्रम समझना, क्योंकि प्रकृति स्थान संक्रम का अलग से नाम लिया उन्होंने। इसी प्रकार सूत्र के अनुसार शेष निर्गमों के अर्थ का भी कथन करना चाहिए। अब इन आठों के स्वरूप का निर्देश नाम मात्र को करते हैं। यानी बहुत शॉर्ट में यहाँ पहले में पहले बताएंगे क्योंकि विस्तार से पूरा पुस्तक में कथन आने ही वाला है। यथा मिथ्यात्व प्रकृति का सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित होना, यह प्रकृति संक्रम का उदाहरण है। यानी एक प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप हो जाना, यह प्रकृति संक्रम हुआ। तथा उसी मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के रहते हुए, यानी अलग अलग गुणस्थानों में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित नहीं होना। देखो मिथ्यात्व प्रकृति है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में क्या मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होता है? तो नहीं होता है। सासाधन में क्या होता है?
नहीं
होता। और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में भी उसका संक्रमण नहीं होता है। उसका ये संक्रमित नहीं होना, यह प्रकृति असंक्रम का उदाहरण है। यह एक शब्द है। अट्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि के, अब ये प्रकृति संक्रम और प्रकृति असंक्रम दो बता दें। संक्रमण होना तो उसको प्रकृति संक्रम कहेंगे। पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं बनती, उसमें संक्रमित नहीं होती, तो वहां उसको असंक्रम का। अब स्थान की बात करेंगे। 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि के 27 प्रकृतियों का संक्रमित होना, 27 प्रकृतियों में का ऊपर क्या लिखा है? 28 संत कम्य मिच्छा इच्छुम्मी 27 आए, ये में चाहिए मेरे ख्याल से। 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि के 27 प्रकृतियों में संक्रमित होना, पेंसिल से करो। यह प्रकृति स्थान संक्रम का उदाहरण है। देखो ये स्थान किसको कहना, हमने पहले देखा था, ये सत्ता की बात है ना, स्थान की बात यहाँ चल रही है। तो कितनी सत्ता है? तो जिसको जो सादी मिथ्या दृष्टि है
28 की सत्ता,
तो उसके 28 की सत्ता है। हाँ, समय दृष्टि के भी 28 की होगी, परंतु यहाँ 28 से 27 होने वाला कौन सा जीव होगा?
उद्वेलना का।
हाँ, उद्वेलना में जब समय मिथ्यात्व की उद्वेलना पूरी होती है तो 28 के बदले वो 27 वाला हो गया, तो उसका स्थान चेंज हो गया। 28 प्रकृति वाला था, 27 प्रकृति वाला हो गया, तो उसको प्रकृति स्थान संक्रम कहेंगे। देखो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान डाला ना उन्होंने, 27 प्रकृतियों में संक्रमित होना, यह प्रकृति स्थान संक्रम का उदाहरण है। तथा उसी मिथ्या दृष्टि के 28 प्रकृतियों का संक्रमित नहीं होना, यह प्रकृति स्थान असंक्रम का उदाहरण है। यानी वो 28 का 28 ही रह गया, तो उसको असंक्रम कहेंगे हम। यानी स्थान का असंक्रम, ख्याल में आती बात? प्रकृति प्रतिग्रह का उदाहरण, अभी प्रकृति प्रतिग्रह को बताएंगे।
28 प्रकृति का असंक्रमण बताया है तो वहाँ पे तो एक का तो संक्रमण होगा ही ना। अभी सम्यक्त्व का उदय है तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व रूप होगा।
और आप मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं?
चौथे गुणस्थान की।
यहाँ तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का उन्होंने उदाहरण
दिया। तो यहाँ पे मिथ्या दृष्टि में भी सम्यक्त्व का तो मिथ्यात्व रूप होगा ही, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व
बिल्कुल होगा। कब होगा? उदय रूप होगा।
हाँ, उदय रूप।
और यह उद्वेलना रूप भी संक्रमण चल रहा है। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी अभी हम स्थान की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रकृति की बात नहीं ले रहे। प्रकृति संक्रम में कहेंगे कि मिथ्यात्व में उद्वेलना हो रही है तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में टर्न हो रहा है, वहां तो प्रकृति संक्रमण में तो उसको ले लेंगे। परंतु उद्वेलना होते हुए भी जब तक 28 का 28 ही है तब असंक्रमण कहेंगे, स्थान असंक्रमण। स्थान का अर्थ क्या है? कितनी प्रकृतियां है वहां पर? 28 जब तक उद्वेलना एक की पूरी नहीं होगी तब तक वो 27 वाला नहीं बनेगा।
अच्छा, प्रकृति 28
में से 27 हो जाना वो स्थान संक्रमण है। पल्ले के असंख्यात भाग तक तो 28 का 28 वाला ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ उद्वेलना और संक्रमण। एक एक प्रकृति का संक्रमण होते हुए भी स्थान जब तक नहीं चेंज होता है तब तक उसको हम स्थान संक्रमण नहीं कहेंगे। तो हमने चार देखे, प्रकृति संक्रम, प्रकृति असंक्रम, स्थान संक्रम और स्थान असंक्रम। प्रकृति प्रतिग्रह का उदाहरण, जैसे ये तो उदाहरण मात्र यहाँ बता रहे हो, ये तो विस्तार से चर्चा तो आगे होगी। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में संक्रमण को प्राप्त हुई सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियों का मिथ्यात्व प्रकृति प्रकृति प्रतिग्रह है। प्रतिग्रह ने वो रिसीवर
कौन से रूप हो रहा है,
किसमें संक्रमित हो रहा है, तो जो संक्रमित हो रही है उसको प्रकृति संक्रम कहेंगे और जिसमें संक्रमित हो रहा है उसको प्रकृति प्रतिग्रह कहेंगे। देखो, मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक प्रकृति तो संक्रमण वाली है, तो सम्यक प्रकृति का संक्रमण हो रहा है, भले उद्वेलना संक्रमण है फिर भी उसको संक्रमण कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकृति संक्रम हो रहा है। किसमें संक्रमित हो रहे, भी मिथ्यात्व रूप हो रही है, सम्यक प्रकृति चेंज हो गई है, तो उसको हम कहेंगे प्रकृति संक्रमण हुआ। परंतु वो मिथ्यात्व में आ मिली है तो उसको रिसीव करने वाले कौन है,
प्रतिग्रह,
उसको प्रकृति प्रतिग्रह कर, यानी जिसमें संक्रमित होता है वो प्रकृति प्रतिग्रह, जिस मिथ्यात्व रूप से हो रहे हैं तो मिथ्यात्व में वो टर्न हो रही है, तो जिसमें संक्रमित हो रही है उसको प्रकृति प्रतिग्रह कहेंगे। यानी उसको किसने एक्सेप्ट किया, किसने रिसीव किया। देखो शंका आगे पूछा है, प्रतिग्रह किसे कहते हैं, संक्रम रूप आधार के सद्भाव में प्रतिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार ये संक्रम के विषय में प्रतिग्रह का अर्थ करें कि संक्रम को प्राप्त हुआ द्रव्य जिसमें ग्रहण किया जाता है, आई ना बात, हमने रिसीव शब्द वापरा, या जो ग्रहण करता है उसे प्रतिग्रह कहते हैं, यानी जिस रूप हो जाता है वो, जिसमें संक्रमित होता है वो प्रतिग्रह। प्रकृति अप्रतिग्रह का उदाहरण, जैसे उसी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां प्रकृति अप्रतिग्रह रूप है। क्या कहते हैं, जो प्रकृति संक्रमित हो रही है और मिथ्यात्व है वो प्रकृति प्रतिग्रह है, परंतु जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में है तो सम्यक रूप नहीं हो सकता मिथ्यात्व, तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व अप्रतिग्रह है। मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति प्रकृति संक्रम है, उसका संक्रमण होता है, परंतु वहां प्रतिग्रह कौन है, मिथ्यात्व, वो प्रतिग्रह है, मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, वो तो मिथ्यात्व प्रतिग्रह है, परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व अप्रतिग्रह है।
जैसे तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रतिग्रह है और ये दोनों अप्रतिग्रह है, सम्यक तीसरे गुणस्थान,
तीसरे गुणस्थान में क्या है,
सम्यक मिथ्यात्व का उदय है।
हाँ।
तो वो रूप ये दोनों प्रकृति,
उद्वेलना को वहाँ लिया नहीं,
उदय रूप,
सॉरी उदय रूप को जो है ना,
हाँ, उसको नहीं,
तो उसमें फ्यूक संक्रमण को नहीं लिया है इन्होंने। अभी पहले बात किया है, यहाँ लिखा था ना पेज नंबर 20 पर लास्ट में, मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि सासाधन समय दृष्टि समय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहते हुए उन दो में संक्रमित नहीं होना, ये प्रकृति असंक्रम कहा था उसको, ये जो क्यूक संक्रमण को यहाँ
नहीं
लिया है, ऐसे संक्रमण जो चलता है ना, गुण संक्रमण हो या विद्या संक्रमण, ऐसा यहाँ नहीं होता, इसलिए उसको असंक्रम के लिए लिया। संक्रमण जो प्रकृति स्वयं संक्रमित होती है उसको प्रकृति संक्रम कहेंगे, और जिस प्रकृति में संक्रमित होती है, जो उसको ग्रहण करता है, उसको प्रकृति प्रतिग्रह का, इतना सिंपल अर्थ। तो जो ग्रहण नहीं करने वाली प्रकृतियां हैं वो अप्रतिग्रह कहेंगे। प्रकृति अप्रतिग्रह का उदाहरण जैसे उसी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां, प्रकृति अगर अप्रतिग्रह रूप है, अथवा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ये परस्पर में प्रतिग्रह रूप नहीं है, इसलिए दर्शन मोहनीय की कोई भी प्रकृति चारित्र करना, चरित्र बन, चारित्र मोहनीय रूप की अपेक्षा अप्रतिग्रह है, प्रकृति अप्रतिग्रह है, और चारित्र मोहनी की कोई भी प्रकृति दर्शन मोहनी की अपेक्षा प्रकृति अप्रतिग्रह है। एक ख्याल में आई, चारित्र मोहनी करना उसको दोनों ही जगह, दो जगह। देखो हमने क्या कहा, जिसमें ग्रहण होता है उसको प्रतिग्रह कहना, जिसमें ग्रहण नहीं होता उसको अप्रतिग्रह कहेंगे। दर्शन मोहनी की प्रकृति ने मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, क्या वो अनंतानुबंधी आदि रूप हो जाती है? दर्शन मोहनी प्रकृति चारित्र मोहनी में संक्रमित नहीं हो सकती, तो चारित्र मोहनी है वो दर्शन मोहनी का अप्रतिग्रह प्रकृतियों का, और ऐसे वाइस वर्सा, दर्शन मोहनी है वो भी प्रतिग्रह नहीं है चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का। वहां कहेंगे वो असंक्रमण में भी उसको, हम उसका उदाहरण ले सकते कि उसका आपस में संक्रमण नहीं होता, जहां संक्रमण नहीं है वहां प्रतिग्रह का सवाल नहीं है। अब प्रकृति स्थान प्रतिग्रह का उदाहरण, जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 22 प्रकृतियों का समुदाय रूप एक प्रतिग्रह स्थान है। प्रतिग्रह ने जिसमें संक्रमित होता है वह प्रतिग्रह, अभी यहां प्रकृतियों की बात नहीं है, यहां स्थान की बात है। तो पहले ऊपर हमने देखा था 28 वाले 27 होती है तो उसमें प्रकृति स्थान का संक्रमण हुआ था, बराबर। अब यहां क्या कहते हैं, स्थान प्रतिग्रह की बात चल रही है अभी, तो प्रतिग्रह में उन्होंने क्या लिखा है, 22 प्रकृतियों के समुदाय रूप एक प्रतिग्रह स्थान है, ऐसा क्यों लिखा?
बाईस प्रकृति उदय प्रतिग्रह स्थान है तो 22 प्रकृति रूप हो रहा है,
हाँ क्यों 22 क्यों लिया, 28 क्यों नहीं लिया?
क्योंकि प्रतिपक्ष का उदय नहीं यहाँ पे नहीं है, उसकी अपेक्षा लिया है,
उदय की अपेक्षा नहीं लगाना है,
संक्रमण की अपेक्षा।
देखो संक्रमण में भी बंद की अपेक्षा आती है, जिसका बंद हो उस रूप संक्रमण हो सकता है। मिथ्यात्व में बंद का जो स्थान है, बंद रूप प्रकृतियां 19 प्रकृतियां तो ध्रुवबंदी है, कौन सी 19? मिथ्यात्व, सोला कषार, भय जुगुप्सा, ये 19 हुए। अब तीन वेदों में से एक वेद का बंध होगा और दो युगल जो हस्यरति शोकरति उसमें से एक युगल, 19 और 3 22, इसको 22 प्रकृति रूप स्थान कहते हैं, बंध स्थान, ये 22 का बंध स्थान है। जिसका बंध हो रहा है उस रूप अन्य प्रकृति संक्रमित होती है, इसलिए एट अ टाइम 22 उसमें भंग अलग अलग हो गए। भंग का अर्थ क्या है, हास्यरति संक्रमित हो रही है क्या, शोकरति संक्रमित हो रही है, उसका प्रतिग्रह कौन है, उसका संक्रम करने इसमें चेंज हो सकता है, उसको भंग में चले जाएंगे, परंतु उनकी संख्या तो 22 ही रहेगी। ख्याल में आती बात, कभी त्रिवेद रूप परिणमित होगा अन्य दो वेद, या कभी कभी उल्टा भी होगा, परंतु उसका 22 का नंबर तो उतना ही रहेगा। कब? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, पहले मिथ्या तो गुणस्थान में तो ये बात बता रही है, और यहाँ तो उदाहरण के तौर पर, आगे चलकर हर एक गुणस्थान में और हर एक प्रकृति में घटित करेंगे अलग अलग। देखो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 22 प्रकृतियों के समुदाय रूप एक प्रतिग्रह स्थान है, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं बताया क्योंकि 22 का बंध है। जैसे हमने देखा ना संक्रमण उत्कर्षण के लिए बंध की अपेक्षा आती है, तो संक्रमण में भी वो बात है। अब प्रकृति स्थान प्रतिग्रह का उदाहरण, जैसे 16 आदि स्थानों में से कोई एक स्थान प्रकृति स्थान प्रतिग्रह है, देखो क्या कहना चाहते हैं।
हाँ? स्थान तो
प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह का अर्थ है, देखो प्रतिग्रह का अर्थ जिसमें संक्रमित होते हैं उसको प्रतिग्रह कहेंगे। अब हम जरा 16 का स्थान डिराइव करेंगे, मुझे भी सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मिथ्या तो गुण स्थान में 22 का बंध है, सासाधन में 21 का है, तीसरे चौथे में 17 का है, पांचवे में फिर
पे बंध की अपेक्षा,
बंध की मैं अपेक्षा, परंतु वो संक्रमण अलग अलग हो, वहां तो फिर दर्शन मुनि का संक्रमण भी चलेगा, उस अपेक्षा वो 16 वाला स्थान उन्होंने ले लिया है। प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह है, आगे वाले जो स्थान है वो प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह है, ऐसा कहना चाहिए। ये देखेंगे ना, अभी इसका तो खुलासा आगे आने वाला है, इसका खुलासा तो आगे आएगा ना, क्योंकि अभी तो हमने उसके विषय में कुछ जाना भी नहीं है। अब विशेषार्थ भी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा उसका खुलासा हो जाएगा। पहले में पहले प्रतिग्रह स्थान क्या है वो समझ में आया। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 22 प्रकृतियों के समुदाय रूप प्रकृति स्थान है, इसका अर्थ है 22 प्रकृतियों में संक्रमण होता है अन्य प्रकृतियों का, ये बात ख्याल में आई ना। जैसे आगे यहां बताया था ना, अप्रतिग्रह रूप कौन सी होगी वहां पर, जो प्रतिग्रह रूप में 22 ले लिए, बाकी यहाँ सम्यक सम्यक मिथ्या तो वगैरह वो तो अप्रतिग्रह रूप होगी,
पर 16 बताई उन्होंने
प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह नहीं, जिसमें संक्रमण नहीं,
नहीं
होता
हो, जिस रूप संक्रमण नहीं होता,
हाँ, जिस रूप नहीं होता, बात आएगी भी आगे उसकी, ये ऊपरी की गुण स्थानों में जहाँ उस रूप नहीं होता उसकी बात चल रही है। विशेषा पहले संक्रम का उपक्रम आदि चार के द्वारा कथन करते हुए अंत में चुन्नी सूत्रकार ने संक्रम के चार अर्थाधिकार बतलाए रहे। उनमें प्रथम अर्थाधिकार प्रकृति संक्रम है, इसलिए सर्वप्रथम इसका वर्णन क्रम प्राप्त है, इसी से इसका पुनः उपक्रम आदि चार के द्वारा निर्देश किया है। यानी प्रकृति संक्रम का पहले मात्र संक्रम की बात उठाई थी, अब यहाँ प्रकृति संक्रम का निर्देश कर रहे हैं, तो उसमें दोबारा सब उपक्रम आदि भेद लगाएंगे, जो जो विषय शुरू होता है उसमें उपक्रम वगैरह सब लगाएंगे। यह निर्देश केवल चूर्णी सूत्रकार ने ही नहीं किया है किंतु मूल ग्रंथकर्ता ने भी किया है। इसके लिए तीन गाथाएं आई है, अभी हमने जो 24, 25, 26 गाथाएं पढ़ी थी। प्रथम गाथा में उपक्रम निक्षेप और निर्गम, निर्गम का अर्थ अनुगम के भेद देकर नए योजना करने की सूचना की है, तथा दूसरी और तीसरी गाथा में निर्गम के विषय में विशेष खुलासा और निर्गम के अवांतर भेदों का नाम निर्देश किया गया है, उसके नाम बतलाए। अभी जो हमने 8 नाम देखे थे, यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ये गाथाएं केवल प्रकृति संक्रम के विषय में ही क्यों लागू होती है, सामान्य संक्रम के विषय में क्यों नहीं, प्रकृति संक्रम के विषय में एक बताई गाथा है, पहले बतानी थी, तो इसका यह खुलासा है। इन गाथाओं में स्पष्टतः प्रकृति संक्रम के अवांतर भेदों का ही एकमात्र निर्देश किया है। इससे ज्ञात होता है इन गाथाओं का संबंध केवल प्रकृति संक्रम से ही है। अब यहाँ क्रम से चूर्णी सूत्र और टीका के अनुसार प्रकृति संक्रम के विषय में इन उपक्रम आदि का खुलासा करते हैं। ये विशेषार्थ ही चल रहा है। उपक्रम के 5 भेद हैं: आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। आनुपूर्वी के 3 भेदों में से पूर्वानुपूर्वी के अनुसार प्रकृति संक्रम यह पहला भेद है। संक्रम के जो भेद किए हैं, प्रकृति संक्रम, स्थान संक्रम, उसमें ये पहला भेद है। पश्चादानुपूर्वी के अनुसार चौथा, और यत्र तत्रानुपूर्वी के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा भेद है। कोई भी हो सकता है, हम किसी भी क्रम से कह सकते हैं। नाम के कई भेद हैं, उनमें से यह इसका गौण्य नाम है, यानी गुण के अनुसार उसका नाम दिया है। प्रमाण ग्रंथ की अपेक्षा संख्या और अर्थ की अपेक्षा अनंत है। वक्तव्यता के 3 भेद हैं, उनमें से इसमें स्वसमय वक्तव्यता है। अर्थाधिकार इसके 8 है, जो निर्गम का कथन करते समय बतलाए जाएंगे।
यह प्रमाण ग्रंथ की अपेक्षा संख्या कैसे कारण?
ग्रंथ जो है, ग्रंथ में शब्द कितने हैं?
अच्छा, संख्या।
ग्रंथ तो संख्यात शब्दों का है या संख्यात पदों का समूह है, और उसमें अर्थ तो अनंत भरा है। 8 तो उसके निर्गम में बताएंगे अर्थाधिकार। उपक्रम के बाद दूसरा भेद निक्षेप है। उपक्रम के 5 भेद बताए, अभी निक्षेप। प्रकृति संक्रम को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 निक्षेपों में घटित करके बतलाया है। यद्यपि मूल कर्ता ने केवल 4 निक्षेपों की सूचना मात्र की है, तदनुसार वे 4 निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमेशा हम नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव कहते हैं। पर चूर्णी सूत्रकार ने इन 4 निक्षेपों का प्रकृत में ग्रहण न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 निक्षेपों का ही ग्रहण किया है। मालूम होता है कि संक्रम में नाम और स्थापना की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की उपयोगिता है, इसलिए उन दोनों को गौण करके इन 4 की बात उठाई। इसी से प्रकृति में नाम और स्थापना को जोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है। उल्टा अर्थ हो गया। उदाहरणार्थ, किसी का प्रकृति संक्रम ऐसा नाम रखने से, या किसी में यह प्रकृति संक्रम है ऐसी स्थापना करने से प्रकृति संक्रम के समझने में प्रकृति हुआ है, डबल सा हुआ, विशेष सहायता नहीं मिलती। पर द्रव्यादिक के संक्रम से यथा योग्य कर्म प्रकृतियों के संक्रमण में सहायता मिलती है, इसलिए प्रकृति संक्रम की निक्षेप व्यवस्था करते हुए इन 4 निक्षेपों की यहाँ योजना की है। ये 4 निक्षेप, क्योंकि किसी का नाम प्रकृति संक्रम रखेंगे तो उससे क्या मिलेगा, और किसी अन्य चीज में यह प्रकृति संक्रम ऐसा कहने से भी हमें कुछ लाभ नहीं है। प्रकृति संक्रम को समझने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निक्षेप लगाएंगे। उदाहरणार्थ, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आने पर जीव गर्मी का अधिक अनुभव करता है, इससे जीव को गर्मी जन्य तीव्र वेदना होती है, अतः ऐसे अवसर पर गर्मी का निमित्त पाकर असाता की उदय व उदीर्णा होने लगती है, तथा साता कर्म का असातारूप संक्रम भी होने लगता है। क्या कहना चाहते हैं? इसी प्रकार सभी निक्षेपों के संबंध में यथा योग्य घटित कर लेना चाहिए। प्रकृति में नए का इतना ही प्रयोजन है, इन निक्षेपों में कौन निक्षेप किस नए का विषय है, सो इसका विशेष खुलासा पूर्व में कराए हैं। हमने पहले विस्तार से देखा था, अतः यहाँ नहीं किया गया है। अब रहा निर्गम, सो प्रकृति में यानी अभी वर्तमान में सांप्रत में यह 8 प्रकार का है। विशेष खुलासा इसका स्वयं टीकाकार ने ही किया है, इसलिए यहाँ इसका खुलासा नहीं किया जाता। किंतु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अन्यत्र जिसे अनुगम कहा है वही यहाँ निर्गम शब्द द्वारा कहा गया है। यानी अनुगम और निर्गम एक ही बात है, वो तो हमने पहले ही देख ली थी। अब आगे का सूत्र उन्होंने किया ही नहीं, वो तो जब उसका विषय आएगा ना तब उसको हम अधिक विस्तार से देख सकेंगे। देखना है तो फिर आपको उसमें इंडेक्स में देख के जाना पड़ेगा, जिसको बहुत जिज्ञासा है वो फिर इंडेक्स में तो होगा ना
पूरा शास्त्र।
कौन सा लाया था आपने वो? तो असंक्रम की बात थी ना, स्थान असंक्रम, अप्रतिग्रह की बात थी ना, स्थान अप्रतिग्रह। क्रम से आएगा तभी मिलेगा। चलो हाँ आगे बढ़ते भी हम। इस प्रकार पदच्छेद द्वारा प्रथम गाथा के अर्थ का खुलासा करके यहाँ पहली गाथा में एक एक शब्द जो आया था उसका अलग अलग अर्थ बता के अब दूसरी गाथा का पदच्छेद करने के लिए यह आगे का सूत्र कहते हैं। एक एक काय संकमो दुविहो संकम विहीय पयड़ीयेति पदस्य अर्थो कायवो। एक एक काय संकमो दुविहो संकम विहीय पयड़ीये, इस पद का अर्थ करना चाहिए। किसका अर्थ बताना है वो पहले पद बता दिया उन्होंने, अर्थ तो बाद में बताएंगे। यह प्रतिज्ञा सूत्र है जिसके द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है। अब प्रकृति संक्रम और प्रकृति स्थान संक्रम इनसे संबंध रखने वाले इस दूसरी गाथा के पूर्वार्ध के अर्थ का विशेष खुलासा करेंगे, क्योंकि एक लाइन पूरी लिख दी उन्होंने। हमने देखा था ना 25 नंबर की जो गाथा थी, देखो 16 नंबर पर एक एक काय संकमो दुविहो संकम विहीय पयड़ीये, 16 पृष्ठ पर 25 नंबर की गाथा में पहली लाइन है। अब उसको आगे बता रहे हैं। एक एक काय ती एक एक पयड़ी संकमो संकमो दुहुयक्ति दुवियो संकमोक्ति भणिदम होदी संकम विहीयति पयड़ी ठाण संकमो पयड़ीयति पयड़ी संकमोक्ति भणियम होई। कौन से शब्द से क्या जानना ये बात बताए। देखो नीचे सूत्र है, एक एक काय इस पद के द्वारा एक एक प्रकृति संक्रम और संक्रमो दुविहो इस पद द्वारा संक्रम दो प्रकार का है यह कहा गया है, तथा संक्रम विहीय संक्रम कैसे लिया, संकम चाहिए ऊपर भी पहली लाइन में संक्रमो दुविहो चाहिए पहले भी और दूसरे में क्र हुआ है वो क करना संक्रमो, क्योंकि प्राकृत है नहीं सेकंड लाइन पढ़ रही हो तथा संक्रम विहीय इस पद द्वारा प्रकृति स्थान संक्रम और पयड़ीय इस पद द्वारा को बराबर है कि शो दिख रहा है प्रकृति संक्रम कहा गया है। देखो ये 16 पेज निकालना, देखो ऊपर की लाइन में जो लिखा ना एक एक काय, उस एक एक काय से क्या समझना, एक एक प्रकृति संक्रम और सेकंड क्या है संक्रमो दुवी हो, उससे समझना संक्रम दो प्रकार का है। आगे लिखा है संक्रम विहीय यानी प्रकृति स्थान संक्रम और पयड़ी यानी प्रकृति संक्रम। अब पढ़ेंगे आगे स्पष्टीकरण पर रहे हम 23 पेज पर 48 नंबर का पॉइंट। गाथा के पूर्वार्ध में प्रकृति संक्रम दो प्रकार का है, एक एक प्रकृति संक्रम ऊपर दिख रहे के बराबर और प्रकृति संक्रम विधि। इस प्रकार से संबंध का कथन करने के लिए आए हुए इस सूत्र का अर्थ कहते हैं यथा संक्रमो दुविहो, यहां भी क्रो चाहिए क्रो नहीं, संक्रमो दुविहो इस पद द्वारा संक्रम दो प्रकार का है यह कहा गया है। यद्यपि यह गाथा सूत्र का दूसरा अवयव है तथापि इसका सर्वप्रथम व्याख्यान करना चाहिए। क्या कहते हैं, ये शब्द बाद में आया है, पहले में पहले एक एक काय बताया था और संक्रमो दुविहो बाद में लिखा है, इसलिए कहते दूसरा अवयव है, फिर भी उसका पहले समझना। किंतु यहाँ पर सामान्य संक्रम नहीं लिया गया है यह जताने के लिए, यहाँ संक्रम के दो भेद नहीं है प्रकृति संक्रम के, इसलिए एक एक काय के बाद उसको लिखा। क्या कहते हैं, यहाँ पर सामान्य संक्रम नहीं लिया गया है यानी यहाँ मान्य मात्र सामान्य संक्रमण का भी प्रकरण नहीं, वो तो पहले बता चुके हैं, अब प्रकृति संक्रमण की बात चलेगी, उसके भेद प्रबोधों की बात चलेगी। तो सामान्य नहीं लिया गया यह जताने के लिए गाथा सूत्र के पूर्वार्ध के अंत में आए हुए पयड़ीय इस पद के साथ संक्रमो दुविहो इस पद का संबंध करना चाहिए। वहाँ प्रकृति शब्द आया है तो प्रकृति संक्रम की यह बात है, ये बात सिद्ध होती है। इसलिए प्रकृति संक्रम दो प्रकार का है यह गाथा सूत्र के इन दो पदों का समुच्चयार्थ होता है। अब यह प्रकृति संक्रम दो प्रकार का कैसे है ऐसा पूछने पर गाथा के प्रथम पद एक एक काय और तृतीय पद संक्रम विहीय इन दोनों पदों का संबंध करके इन दोनों पदों द्वारा क्रम से एक एक प्रकृति संक्रम और प्रकृति स्थान संक्रम ये दो भेद बतलाए गए। समझ में आई बात, गाथा में तो पहला शब्द एक एक काय था और बाद में वहाँ संक्रमो दुविहो का, तो ये मात्र सामान्य संक्रम की बात नहीं है प्रकृति संक्रम की बात है, क्योंकि पहली लाइन के अंत शब्द पयड़ी ये जो लिखा है तो ये प्रकृति शब्द वो संक्रम के साथ लगाना, तो प्रकृति संक्रम दो प्रकार का है, पहला शब्द एक एक और बाद में संक्रम विही जो बताया है तो उसके स्थान संक्रम की बात करती है। शंका, एक एक का इतने मात्र पद से एक एक प्रकृति संक्रम का ज्ञान कैसे किया जा सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि पयड़ीय संक्रम इस उत्तर पद के साथ संबंध कर लेने से उक्त अर्थ प्राप्त होता है। उत्तर पद यानी सेकंड लाइन, आगे चलकर उसका भी वो व्याख्यान करने वाले हैं। उत्तर पद यानी वो आगे वाला शब्द, आगे वाली सेकंड लाइन ने आगे वाला पद, एक एक काय लिखा था ना, एक एक काय के बाद क्या है, संकमो दुवी हो, परंतु वो संकम कैसा है, पयड़ीय संकम हो, प्रकृति का संक्रमण है, प्रकृति संक्रम है, उससे ये ज्ञात होता है एक एक प्रकृति संक्रम है। तथा संकम विही इस पद में आए हुए जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त प्रकारवाची विधि, विधि क्या बताता है, प्रकार बताता है। तो प्रकारवाची विधि शब्द का अवलंबन लेने से प्रकृति स्थान संक्रम का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रकृति की विवक्षा में ये जघन्य आदि भेद नहीं हो सकते। ये जब स्थान कहते कि कितने प्रकृतियां संक्रमित हो रही है, तो उसमें वो जघन्य उत्कृष्ट पद लग सकता है,
एक तो नहीं लगता,
एक में कैसा जघन्य उत्कृष्ट लगाएंगे। इसलिए वहां विधि बताए, विधि यानी प्रकार, प्रकार तो स्थानों में हो सकते हैं। इसलिए गाथा सूत्र के पूर्वार्ध से संबंध रखने वाले इन चारों ही पदों के द्वारा एक एक प्रकृति संक्रम और प्रकृति स्थान संक्रम ये दो निर्गम कहे गए हैं। 25 नंबर की गाथा में यहाँ पर ये दो स्थान पहले पूर्वार्ध ने पहली लाइन से बताए हैं, विशेषार्थ इसी पर बताते हैं। गाथा का पूर्वार्ध इस प्रकार है, एक एक काय संकमो दुविहो संकम विहीय पयड़ीय, इसका निम्न प्रकार से अन्वय करना चाहिए। अन्वय ने अभी इसको सीधी लाइन में रख के बताएंगे कि एक कि पयड़ीय संकमो दुविहो, पयड़ीय शब्द लास्ट में रखा था और संकमो दुविह ये दूसरे लेवल नंबर पर रखा था, तो उसको इस तरह से प्रस्तुत करना, पयड़ीय संकमो दुविहो, यानी प्रकृति संक्रम दो प्रकार का है, एक एक का है पयड़ीय संकमो संकम विहीय। ख्याल में एक बार, एक एक प्रकृति संक्रम और संक्रम भी। इस अन्वय में पयड़ीय संकमो इन दो पदों का दो बार अन्वय किया गया है, क्योंकि संकमो दुवियों में भी वो पयड़ीय संकमो दुवियों लगाया और एक एक काय के साथ भी पयड़ीय शब्द दोबारा ले लिया, एक एक काय पयड़ीय दुवी संकमो। तदनुसार गाथा के इस पूर्वार्ध का यह अर्थ हुआ कि प्रकृति संक्रम दो प्रकार का है, एक एक प्रकृति संक्रम और प्रकृति स्थान संक्रम। यहाँ संकम विही इस पद का प्रकृति स्थान संक्रम इतना अर्थ लिया गया है, क्योंकि इस पद में आया हुआ विधि शब्द प्रकारवाची है। यहाँ तो संक्रम विही कहा, संकम विही, और उसका अर्थ स्थान संक्रमण कर दिया, क्यों विधि शब्द प्रकारवाची है, जिससे उक्त अर्थ प्राप्त हो जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये बात ख्याल में आई,
ये दोनों साइमल्टेनियस चलेगा, एक एक प्रकृति स्थान संक्रमण और एक, अरे एक एक प्रकृति संक्रमण और स्थान संक्रमण,
हाँ
वो साइमल्टेनियसली,
हाँ चलेगी,
हाँ
साइमल्टेनियसली अनेक बातें होती है,
एक स्थान में कितना
क्या
संक्रमण
है ना, पहले तो पहले हम शब्दों से परिचित करा रहे हैं, कौन से गुण स्थान में क्या क्या होता है उसकी बात तो बाद में होगी, और कौन सी प्रकृति कहाँ संक्रमण होने वाली है, नहीं संक्रमण होने वाली है, कोई प्रतिग्रह है, कौन सी अप्रतिग्रह, वो तो बात विस्तार से आएगी। पहले में पहले किसको क्या कहना, यहाँ तो अधिकारों के नाम बता रहे हैं,
टर्मिनोलॉजी
वो भी, ये जो आठ अनुगम है ना, आठ अधिकार है, तो उसमें पूरा अधिकार का माल मिलेगा हमें बाद में। आगे का सूत्र, संकम परिग्रह विहिति संकमे पयड़ी परिग्रह, संकम परिग्रह विही इस पद से संक्रम के विषय में प्रकृति प्रतिग्रह का ग्रहण किया। आगे बात आई ना वो संकम परिग्रह विही, सेकंड लाइन और परिग्रह उत्तम जहन्नो, यानी यहाँ भी प्रकृति प्रतिग्रह का वर्णन आएगा, संकम परिग्रह विही। बोले का संगम पड़ी गीर थी संक्रम पड़ी पयड़ी पड़ी गह मैंने संक्रम पड़ी गीर पद से संक्रम के विषय में प्रकृति प्रतिग्रह का ग्रहण किया है। संक्रम में या संक्रम की प्रतिग्रह विधि संक्रम प्रतिग्रह विधि इस प्रकार यहाँ पर समास करके समास यानी उसके जो शब्दों का जोड़ शब्द तैयार हुआ संक्रम प्रतिग्रह विधि जो बताया है कि संक्रम की प्रतिग्रह विधि या संक्रम में प्रतिग्रह विधि में लगाकर भी हो सकता है उसकी की लगाकर भी षष्ठी समास भी हो सकता है। पयड़ी ये इस पद का अधिकार वश संबंध करना चाहिए। पयड़ी जो पहली लाइन में शब्द आया था वो यहाँ पर भी ग्रहण करना चाहिए। शेष कथन सुगम है। फिर और आगे के शब्द बताएंगे। ये अलग छपा है। पड़ी गहो उत्तम जहन्नो है ना। पड़ी गहो पड़ी गो कुछ हुआ है। ये शब्द बराबर नहीं छपा है। ऊपर वाला गलत है। पड़ी गहो 16 नंबर निकालना।
दूसरी लाइन में दूसरा शब्द।
हाँ ये नीचे लिखा ही है ना पड़ी गहो वो ड और गी हुआ है ना तो डी करना पड़ी गहो। हो भी रह गया और वो ग को गो किया और डी के बदले ड लिखा। पड़ी गहो पूरा ही शब्द लिख दो तो महीने में ठीक होगा। तो पड़ी गहो उत्तम जहन्नोति यानी उससे क्या समझना पयड़ी ठाण पड़ी गहो हुआ। लिखकर नीचे पढ़ेंगे पड़ी गहो उत्तम जहन्नो इस पद से प्रकृति स्थान प्रतिग्रह का ग्रहण किया है। प्रतिग्रह की बात है जिसमें संक्रमित होता है उसको प्रतिग्रह कहा था क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट ये विकल्प अन्यत्र संभव नहीं है। अन्यत्र ने एक एक प्रकृति में ये लगा नहीं सकते हम। जहाँ अनेक प्रकृतियां होती है तो कितनी होती है कम होती है ज्यादा होती है उसमें जघन्य उत्कृष्ट पद लगेगा। इस प्रकार इस दूसरी गाथा द्वारा एक एक एकक हुआ एक ही कहें शब्द एक एक प्रकृति संक्रम प्रकृति स्थान संक्रम प्रकृति प्रतिग्रह और प्रकृति स्थान प्रतिग्रह इन चार निर्गमों का मुक्त कंठ होकर कथन किया है यानी विस्तार से खंड मुक्त कंठ है ना विस्तार तथा इनके प्रतिपक्ष भूत चार अन्य निर्गम भी देशामर्शक भाव से सूचित किए गए हैं। देशामर्शक ने किसी एक को हमने बताया और उसी से इसका उसमें गर्भित है ऐसा जान लिया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। आशय है कि यद्यपि इस दूसरी गाथा द्वारा चार निर्गमों का ही सूचन किया है किंतु यह गाथा देशामर्शक है अतः इससे इनके प्रतिपक्षभूत चार अन्य निर्गमों का भी ग्रहण हो जाता है। अब इन्हीं आठ निर्गमों का स्पष्टीकरण करने के लिए तीसरी गाथा का पदच्छेद करते हैं। अब तीसरी जो 26 नंबर की गाथा हमने देखी थी 17 पृष्ठ पर उसकी बात बताएंगे। पयड़ी पयड़ी ठाणे सु संकमोक्ति पयड़ी संकमो पयड़ी ठाण संकमोच इन उन शब्दों से क्या समझना वो बात बता रहे। पयड़ी पयड़ी ठणेसु ठाणेसु करना पयड़ी पयड़ी ठाणेसु संकमो इस द्वारा यानी इस पद द्वारा प्रकृति संक्रम और प्रकृति स्थान संक्रम का ग्रहण किया है। इन्हें संक्रम शब्द दोनों के लिए लगाया प्रकृति स्थान संक्रम ये प्रकृति संक्रम
प्रकृति
और प्रकृति स्थान संक्रम। शंका तीसरी गाथा सूत्र के पयड़ी इत्यादि अवयव में संबंध की विवक्षा किए बिना आधार का निर्देश कैसे किया गया है? यानी वहां मात्र पयड़ी लिखा है, पयड़ी पयड़ी ठाणसु संकमो, तो पयड़ी से संकमो लिखा नहीं था, तो उसका निर्देश उसको कैसा उन्होंने ले लिया? समाधान, ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विषय रूप अर्थ विवक्षित है, जो विषय चल रहा है उसका अर्थ यहाँ समझ लेना चाहिए। आशय यह है कि यहाँ पर आधार अर्थ में सप्तमी विभक्ति का निर्देश नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हैं? ये जो आगे बताए ना, पयड़ी ठाणसु संक्रमो, ये आधार बताया किसमें संक्रमण, तो प्रकृति स्थान, ये सु लगाया, ये तो सप्तमी विभक्ति लगाई थी, ऐसे पयड़ी में क्यों नहीं लगाए, पयड़ी सु ऐसा क्यों नहीं लिखा? किंतु विषय अर्थ में सप्तमी का निर्देश किया है, जिससे प्रकृति विषयक एक संक्रम और प्रकृति स्थान विषयक दूसरा संक्रम, यह अर्थ होता है। दोनों को मिलकर प्रकृति प्रकृति स्थान में संक्रम ऐसा लिया ना, वो में शब्द है, दोनों को कॉमन लगा दिया। अब आगे के जो शब्द लिखेंगे, आगे लिखा ना असंकमो तहा दुबी हो, ऊपर देखो असंकमो तहा दुबी होती पयड़ी असंकमो पयड़ी ठान असंकमो च, पहले वो संक्रम के लिए पयड़ी और पयड़ी ठान शब्द लगा दिया, अब यहाँ असंकम के लिए वो दोनों शब्द दोबारा नहीं लिए, फिर भी विषय के अनुसार समझना चाहिए, ये प्रकृति असंक्रम प्रकृति स्थान असंक्रमण समझना। नीचे अर्थ में देखते हैं, असंकमो तहा दुवियो इस द्वारा प्रकृति असंक्रम और प्रकृति स्थान असंक्रम का ग्रहण किया है। असंकमो तहा दुवियो यहाँ पर पयड़ी पयड़ी ठाणेसु इस पद का अधिकारवश संबंध कर लेना चाहिए, यानी प्रकृति प्रकृति स्थान में संक्रम और प्रकृति प्रकृति स्थान में असंक्रम, जिससे उक्त गाथांश द्वारा प्रकृति असंक्रम और प्रकृति स्थान असंक्रम इन दोनों का संग्रह किया गया हो जाता है। अब आगे का जो क्या रह गया, अभी वहां पर सेकंड लाइन में दुविहो परिग्रह विही, दुविहो परिग्रह विही ती, यानी उस शब्द से पयड़ी परिग्रहो पयड़ी ठाण परिग्रहो च, यानी वहां केवल दो प्रकार के ही लिख दिए, प्रतिग्रह विधि दो प्रकार का है, यानी उसमें भी प्रकृति और प्रकृति स्थान समझ लेना। दुविहो परिग्रह विही इस द्वारा प्रकृति प्रतिग्रह और प्रकृति स्थान प्रतिग्रह का ग्रहण किया गया। यहाँ पर भी पूर्ववत अधिकारों का संबंध हो जाने से प्रकृत निर्गमों का ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बात समझ में आती है? अब कहते दुविहो अपरिग्रह भी यानी अप्रतिग्रह भी दो प्रकार का है, उसमें भी प्रकृति और प्रकृति स्थान जोड़ देना। देखो दुवी अपरिग्रह विहती पयड़ी अपरिग्रह पयड़ी ठाण अपरिग्रह च, दुविहो अपरिग्रह विहीय इस द्वारा, इसको इन्वर्टेड करना, इसके द्वारा क्या समझना है?
प्रकृति अप्रतिग्रह,
प्रकृति अप्रतिग्रह और प्रकृति स्थान अप्रतिग्रह का ग्रहण किया गया है। यहाँ पर भी पूर्ववत अधिकारवश संबंध कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार प्रकृति संक्रम के ये आठ निर्गम कहे, यहाँ तो अधिकारों के नाम पहले बताए, अभी तो विषय आएगा विस्तार। इस प्रकार गाथा सूत्रों के आधार से प्रकृति संक्रम के चार प्रकार के अवतार का कथन करके प्रकृत अर्थ का उपसंहार करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, ऐसा सुप्त फासो, यह सूत्र स्पर्श है। सूत्र स्पर्श ने ऐसा उसके अर्थ हमने जान लिया। इस प्रकार यह गाथा सूत्रों के प्रत्येक पद के अर्थ का स्पर्श किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी गाथा जो बताई तीन, उसके एक एक शब्द का उन्होंने अर्थ जान लिया है, बता दिया। अब पूर्वोक्त इन आठ निर्गमों में से एक एक प्रकृति संबंधी निर्गम का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी ये पहला अनुगम है। हाँ, यहाँ से सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आठ अधिकार है, उसमें से पहला एक एक प्रकृति संक्रम का प्रकरण यहाँ शुरू हो जाएगा। ऊपर देखते हैं, एक एक पैरी संक्रमे पयदम, एक एक प्रकृति संक्रम का प्रकरण है। यानी वो अभी प्रकृति चलेगा, इसको प्रकरण कहा, जिसमें एक एक प्रकृति असंक्रम, प्रकृति प्रतिग्रह और प्रकृति अप्रतिग्रह, ये अंतर्भूत है, तीनों इसमें अंतर्भूत हो गया। यानी यहाँ लिख तो दिया एक एक प्रकृति संक्रम, उसी में असंक्रम भी समझ में, वो बताएंगे अभी आगे चलकर, और किसमें संक्रमित होता है वो भी बताएंगे, किसमें संक्रमित, कौन सी प्रकृति असंक्रमित रहती है, किसमें नहीं होता वो भी बताएंगे। तो ये भी अंतर्भूत है, चार हो भी जाएंगे इसमें, एक एक प्रकृति संक्रम और वो प्रकृति स्थान संक्रम में बाकी अन्य चार आ जाएंगे। ऐसे एक एक प्रकृति संक्रम का प्रकरण है, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। सो इस विषय में 24 अनुयोग द्वार है। अनुगम नंबर एक है, परंतु इसके अनुयोग द्वार है 24। यथा समुत्कीर्तना, यानी वो है यहाँ बता देंगे, वो समुत्कीर्तना हो जाती है। सर्वसंक्रम, नो सर्वसंक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्य संक्रम, अजघन्य संक्रम, सादी संक्रम, अनादि संक्रम, ध्रुव संक्रम, अध्रुव संक्रम, ये तो पहले बता दिया। फिर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल और अंतर, नंबर दे रहे हो क्या?
12 13 14 तक गए ना?
हाँ, 12 13 और 14 हुए ना।
अभी नाना जीव
की, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय
15।
फिर अभी सब नाना जीवों की अपेक्षा ही लगेगी आगे वाले। फिर भागा भाग, परिमाण यानी प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, सन्निकर्ष, भाव और अल्पबोध, 24 हो गए ना। इनमें से समुत्कीर्तन आदि 11 अनुयोग द्वार, 11 अध्रुव सक, अल्प वर्णनीय होने से सूत्रकार के द्वारा नहीं कहे गए, चुनी सूत्र द्वारा उन्होंने नहीं कहे। अतः उच्चारणा के अनुसार, उच्चारणाचार्य ने उसको बता दिया, भले वो एक एक लाइन में भी क्यों नहीं हो, तो उसकी बात बताएंगे। उनका कथन करते हैं यथा, ये अनुयोग अभी यहाँ चलेगी, एक एक अनुयोग। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनिय की सब प्रकृतियों का संक्रमण संक्रम है बता दिया। इस प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व का संक्रम नहीं होता। तथा अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक तो प्रकृति का संक्रम नहीं होता, क्यों नहीं होता?
सभी समय दृष्टि है,
सभी समय दृष्टि उद्वेलना नहीं होती। और यहाँ जो बताए हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सभी मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, विशेषण, मिथ्यात्व का संक्रम सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है, किंतु पंचेंद्रिय तीरियन से लब्धि अपर्याप्त और मनुष्य लब्धि अपर्याप्त जीवों के सम्यक्व की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः इनके मिथ्यात्व के संक्रम का निषेध किया तथा सम्यक्व का संक्रम उसी मिथ्या दृष्टि के संभव है जिसके उसकी सत्ता है। ये सत्ता बिना उसका उद्वेलना कैसे होगी? यथा अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, अतः इनके सम्यक्त्व के संक्रम का निषेध किया है। शेष कथन सुगम। समुत्कीर्तिना में वो बस संक्रम है इतनी बात बताई है, और जिनमें नहीं पाया जाता उसको भी बताया। अभी एक एक जोड़ी बताएंगे। सर्व संक्रम और नो सर्व संक्रम के अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है, दो और तीन। ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से सब प्रकृतियों का संक्रम करने वाले जीव के सर्व संक्रम होता है, और इससे न्यून प्रकृतियों का संक्रम करने वाले जीव के नो सर्व संक्रम होता है। जो सभी का करेंगे वो सर्व संक्रम कहलाएंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। उत्कृष्ट संक्रम और अनुत्कृष्ट संक्रम अनुगम से। अभी चार और पांच नंबर।
ये सर्व प्रकृति का भी संक्रमण हो सकता है सभी का,
बताए ना अभी।
हाँ बताया तो सही।
अभी 58 नंबर के पॉइंट में क्या बताया, 26 नंबर के पृष्ठ पर। ओग से मोनिय की सब प्रकृतियों का संक्रम है, बताए ना। जिस मार्गणा में नहीं पाया जाएगा वहां कहेंगे इतने का नहीं होता, इतने का होता है, तो उसको नो सर्व में ले लेंगे। अभी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। उससे 27 प्रकृतियों का संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट संक्रम होता है, और इससे न्यून प्रकृतियों का संक्रम करने वाले जीव के अनुत्कृष्ट संक्रम होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। देखो 27 का क्यों कहा, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होता, मिथ्यात्व में होगा,
मिथ्यात्व
का संक्रमण नहीं होगा, वो उसका जहां होता है वहां अन्य दो का नहीं होगा। देखो विशेषार्थ, 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व के सिवा सब प्रकृतियों का संक्रम संभव है।
कि एक जीव की अपेक्षा बात है ना, कि नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अभी तो चल रहा है।
हाँ, इसलिए यह उत्कृष्ट संक्रम है।
ये एक जीव की अपेक्षा इतना 27 का संक्रमण हो सकता है?
एक तभी तो बताएंगे ना। क्यों, इसमें क्या है, क्यों नहीं होगा? मिथ्यात्व
के सिवा
28 की सत्ता वाला है।
हाँ।
तो सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रकृति की तो उसका संक्रमण हो रहा है।
हाँ।
और जो कषाय नो कषाय वो आपस में संक्रमित होते ही रहते हैं।
जिसका बंध होगा उसी रूप संक्रमण होगा।
हाँ, तो परंतु संक्रम होने वाली प्रकृतियां है कि नहीं है, ये बात होगी।
अच्छा, संक्रमित हो सकता है तो एक जीव की अपेक्षा
कितना संक्रम, वो एक जीव अनेक जीव सभी चर्चा आएगी, अभी सारे भंग आएंगे, अपना विषय ही पूरा वही आने वाला है ना। ये केवल यहाँ टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं, वो उसका स्वामी कौन है, क्या बातें होती है, वो तो सब चर्चा आएगी। तथा इसके सिवा शेष सब अनुत्कृष्ट संक्रम है, यानी जहाँ 27 नहीं है वो सारे अनुत्कृष्ट कहलाएंगे। पर यह ओघ प्ररूपणा है, आदेश से जहाँ जैसी प्रकृतियां और उनका बंध संभव हो तदनुसार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का विचार करना चाहिए। आगे ये तो हमने देखा, चार और पांच नंबर देखा ना अभी, अभी जघन्य और अजघन्य देखेंगे, यानी जघन्य संक्रम और अजघन्य संक्रम। तो जघन्य संक्रम और अजघन्य संक्रमानुगम की अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृति का संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम होता है और अधिक प्रकृतियों का संक्रम करने वाले जीव के अजघन्य संक्रम होता है। अभी सत्ता में ही नहीं होगी तो कहां से करेगी शंका। सबसे जघन्य प्रकृति, इसका क्या तात्पर्य है? प्रकृति कोई जघन्य उत्कृष्ट नहीं है, जघन्य प्रकृतियां नहीं, नंबर ऑफ प्रकृतियां। समाधान, जो जघन्य संख्या से युक्त है वह जघन्य प्रकृति है और इससे अधिक संख्या वाली प्रकृतियां अजघन्य कहलाती है, क्योंकि यहां पर प्रकृति विषयक संख्या की अपेक्षा जघन्य और अजघन्य माना गया है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए प्रकृतियों की संख्या। नहीं,
मिनिमम प्रकृतियों का
कितनी प्रकृतियां संक्रमित होती है इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। ये तो हो गया। अभी सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, चार एक साथ लिए, आठ नौ दस ग्यारह, देखो सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव संक्रमानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व क्या बराबर करना, मिथ्या हुआ है मिथ्यात्व, यानी यह पहले प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ओग से मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम क्या सादि है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या या अध्रुव है? तो कहते सादि और अध्रुव है। तो मिथ्यात्व का संक्रमण कब होगा? जब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। और अन्य दो का कब होगा? जब सम्यक्त्व प्राप्त करके बाद में मिथ्यात्व में जाएगा। वो तो अनादि से किसी के नहीं हो सकता, तो वो तो सादि हुआ। अध्रुव क्यों? क्योंकि वो तो मिट जाएगा बाद में, जब दर्शन मुनि की क्षमा हो जाएगी, वो तो मिटने वाला है। 16 कषाय, ये क्षपणा हो या उद्वेलना पूरी हो जाए तब भी वहां तो कोई उसके संक्रमण नहीं होगा। 16 कषाय और 9 नौ कषाय का संक्रम क्या सादि है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है? तो कहते सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का है।
ये सादि भी लिया है यहाँ पे।
हाँ, सादि भी लिया है, क्योंकि जहाँ संक्रम रुक जाता है बीच में और फिर दोबारा शुरू होता है तो उसको सादि कहेंगे। आदेश से नारकियों में सब प्रकृतियों का सादि और अध्रुव संक्रम है, क्योंकि वो तो मार्गणा तो अनादि से नहीं है ना नारकियों के, इसलिए सादि का। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषण, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता प्राप्त होने पर ही मिथ्यात्व, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम संभव है, किंतु उक्त दो प्रकृतियों की सत्ता अनादिकाल से नहीं पाई जाती। अतः इन तीन प्रकृतियों का संक्रम सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार का बतलाया है। अब रही 16 कषाय और 9 नौ कषाय रूप 25 प्रकृतियां, सो इनमें सादि आदि चारों विकल्प संभव है, क्योंकि इन 25 प्रकृतियों का जिन प्रकृतियों में संक्रम हो सकता है उनकी जब तक बंध विच्छित नहीं हुई तब तक इनका संक्रम अनादि है। क्या कहना चाहते हैं? 25 में से जो हम अनंतानु, पहले बंध विच्छित किसकी होगी 25 में से?
अनंतानु मिथ्यात्व की होगी। अच्छा, ये 16 कर
25 में से बता रहे, अनंत अनुबंधी की होगी, उसके साथ जो कुछ वेद वगैरह जो है, नपुसक वेद पहले में बनता है, दूसरे में त्रिवेद बनता है आदि जो है, ऊपर जो नहीं बनती, तो बंध विच्छित्ति जब तक नहीं हुई तब तक संक्रमण आदि बंध विच्छित्ति के बाद पुनः बंध होने पर इनका संक्रम शादी है। सम्यक तो होके फिर छूट गया है, विसंयोजना होने ही चाहिए, बात जरूरी नहीं है। सम्यक तो अवस्था में बंध नहीं होता था,
अनंतानुबंधी
का, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर बंध शुरू हुआ, तो संक्रमण भी शुरू हो गया। तथा अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव भंग है, यह तो ओग से विचार हुआ। आदेश से विचार करने पर एक जीव की अपेक्षा नरक गति सादी है। एक जीव की अपेक्षा बताई ना, नाना जीवों की अपेक्षा नरक हमेशा ही हो गए, अतः इस अपेक्षा से सभी प्रकृतियों के सादी और अध्रुव ये दो ही भंग संभव है। इसी प्रकार सभी मार्गणाओं में जहाँ ओग या आदेश जो व्यवस्था घटित हो जाए वह लगा लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ अचक्षु दर्शन में ओग व्यवस्था लागू होती है, क्योंकि मोनी की सत्ता वाले जो है, मोनी की बात चल रही नहीं हम और सत्ता वाले ले रहे, तो बारवा वाला तो असत्ता वाला हो जाता है, परंतु वहां तक तो अचक्षु दर्शन तो सभी जीवों के है, एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय है, इसलिए वहां ओग के समान प्ररूपणा जाननी चाहिए। अभव्य मार्गणा में 16 कषाय और 9 नौकषाय की अपेक्षा अनादि और ध्रुव ये दो ही भंग संभव है। तो अभव्य मार्गणा में मिथ्यात्व का कौन सा होगा, सादी होगा कि अनादि होगा?
मिथ्यात्व का संक्रमण होगा,
संक्रमण ही नहीं होगा
अभव्य,
संक्रमण होगा ही नहीं,
सम्यक तो प्राप्ति नहीं करेगा,
संक्रमण ही नहीं हुआ अभव्यों में, संक्रमण कभी होगा ही नहीं।
और आप सत्ता की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, बंध की अपेक्षा,
संक्रमण की बात है, संक्रमण तब होगा जब वो समय दृष्टि होगा, अब अभव्य कभी समय तो प्राप्त करेगा
नहीं, करेगा ही नहीं।
हाँ आगे लिखा है, मैंने पढ़ा भी नहीं था। यहाँ मिथ्यात्व का संक्रम होता नहीं, क्योंकि इसकी सजातीय प्रकृतियाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की इसके नहीं पाई जाती, अभव्यों के तो कभी नहीं पाए जाएंगे। भव्य के एक ध्रुव भंग को छोड़कर शेष सब कथन ओग के समान बन जाता है। अब रही शेष मार्गणाएं, तो उनमें सब कथन नरक गति के समान है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि जब मार्गणाएं आती है तो वो मार्गणाएं तो ध्रुव रूप से नहीं होगी, एक्सेप्ट वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन वाली, तो बाकी में सादी होकर भंग हो गए। इस प्रकार इन सुगम अनियोग द्वारों का कथन न करके चूर्णी सूत्रकार ने इनकी कोई कथन ही नहीं किया, ये उच्चारणाचार्य ने एक एक लाइन में भी तो इसका अर्थ बता दिया। चूर्णी सूत्रकार स्वामित्व का कथन करने के लिए यह आगे का सूत्र कहते हैं। स्वामित्व किसका बताएंगे यहाँ? एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, यानी यहाँ से अपना 12 नंबर और यथार्थ में विषय यहाँ से शुरू होगा, यानी अनियोग नंबर 12 है यहाँ पर। प्रकृति संक्रम की बात चली ना, एक एक प्रकृति संक्रम उसमें बताएंगे भी यहाँ पर, यानी एत्थ सामित्तम। अब यहाँ स्वामित्व का अधिकार है, अब यहाँ एक एक प्रकृति संक्रम के विषय में स्वामित्व का कथन करते हैं, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। यानी कौन सी प्रकृति का संक्रमण करने वाला कौन जीव है, वो बात अभी यहाँ आएगी। मिच्छत्तस संकाम हो को होई, मिथ्यात्व प्रकृति के संक्रम का स्वामी कौन जीव है, क्या देव है या नारकी है, समय दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इस प्रकार इत्यादि रूप से विशेष की अपेक्षा रखने वाला यह पूछा सूत्र है, सूत्रम हो गए, सूत्र है। तो कहते नियमा सम्मायिट्ठी, नियम से सम्य दृष्टि होता है, यानी मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है? नियम से सम्य दृष्टि। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, न मिथ्यात्व में उसका संक्रमण होता है, न सासाधन में, न सम्यक मिथ्यात्व में, क्योंकि अन्यत्र मिथ्यात्व का संक्रम नहीं होता। यद्यपि सूत्र द्वारा सम्यक दृष्टि ही संक्रामक होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। इस प्रकार अन्य योग व्यवच्छेद कर दिया है, तथापि वह सम्यक दृष्टि भी क्षायिक आदि के भेद से तीन प्रकार का है। इसलिए इन सब सम्यक दृष्टियों के सामान्य से प्रकृत स्वामित्व का प्रसंग प्राप्त होने पर इस विषय की विशेषता को बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं।
उपशमक भी अलग लिया है।
तो कहते हैं वेदक सम्मा इट्ठी सवो, वेदक सम्य दृष्टियों में सब जीव मिथ्यात्व के संक्रामक होते हैं। वेदक सम्य दृष्टियों में सब जीव मिथ्यात्व के संक्रामक होते हैं, किंतु इतनी विशेषता है, जिनके संक्रम के योग्य मिथ्यात्व का सत्व है वे ही उसके संक्रामक होते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कृतकृत्य वेदक भी होगा ना, वो भी वेदक है, और उच्चिष्टावली वाला वो भी वेदक है। इतना प्रकरणवश यहाँ पर अर्थ का संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा अन्यत्र प्रकृत स्वामित्व संभव नहीं है।
तो यहाँ पे अंतिम कांडक घात तक ही लेना, उसके हाँ। पीछे जो त्रिभुज संक्रमण होगा वो नहीं लेना।
संक्रमण को यहाँ लिया ही नहीं है। हाँ। उसाम गोचर निराशाणो, उपशामकों में भी जो सासाधन को नहीं प्राप्त हुए हैं, निरासाण वो सासाण वाले नहीं है, क्योंकि सासाधन वाले भी अभी उपशमी काल चल रहे हैं ना उनका, मिथ्यात्व प्रकृति उपशमी थे वहां पर।
हाँ।
वे मिथ्यात्व के संक्रामक होते हैं, यानी उपशम अवस्था में संक्रमण चलता है, परंतु जब सासाधन हुआ तब वो मिथ्यात्व का संक्रमण रुक जाएगा। सभी उपशम समय दृष्टि जब तक सासाधन को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक मिथ्यात्व के संक्रामक होते हैं। अभी इसकी शंका समाधान कल देखेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तक
नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो वज्रायणाम, नमो लोहे सभ्यसावणम। नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो वज्रायणाम, नमो लोहे सभ्यसावणम। नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो वज्रायणाम, नमो लोहे सभ्यसावणम। नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो